हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कृपा की याचना करेंगे और हृदय से समस्त भौतिक मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके प्रेम, श्रद्धा और इस विश्वास के साथ मंगलाचरण करेंगे कि गुरु और गौरंग के आशीर्वाद से हम इस अध्ययन को अच्छे तरीके से समझ सकें और इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। हम सब का परम सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के अमृत रूपी गंगा का पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर, हरे कृष्णा, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 13। वेद व्यास जी कहते हैं, अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषण। अर्थात ये द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम धर्म के समस्त कर्तव्यों को पूरा करने के बाद उसकी तकमील क्या है, उसकी सिद्धि क्या है, संसिद्धिम हरितोषण, कि हम भगवान हरि भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके। और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका बताया केंद्र 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 14। इसके बाद वाले श्लोक में बताया तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देयः पूज्यश्च नित्यदा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन की सिद्धि क्या है, आप भगवान को प्रसन्न करो। और भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या बताया, तस्माद एकेन मनसा, एकेन मन एकाग्र मन से, मन को इधर उधर नहीं बांटना चाहिए, मन को एक जगह पर केवल भगवान की कथा के अंदर। साफ साफ लिखा तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। देखो भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, लेकिन भगवान विवश हो जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने भक्तों के साथ, क्योंकि भगवान ने कह दिया ये यथामाम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे शरण में आएगा मैं उसी भाव से उसको रिजल्ट दूंगा। तो फिर भक्त क्योंकि प्रेम का भाव लेकर आता है तो भगवान को भी प्रेम का भाव प्रकट करना पड़ता है, वो भाव ग्राही जनार्दन है। तो कहा एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, वो भगवान जो सात्वों के यानी भक्तों की हेल्प करना उनको अच्छा लगता है, भक्तों को खुश करना उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भक्तों को भी भगवान को खुश करना अच्छा लगता है। और उनको खुश करने के लिए क्या करना है भक्तों को, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, ये काम करना है, श्रोतव्य अर्थात श्रवण करना है, कीर्तितव्यस्य भगवान के कथाओं का गान करना है, देयः पूज्यस्य नित्यदा और कंटिन्यूअस उनका ध्यान करना है पूजा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया, देखो तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, इसलिए एकाग्र मन से उस भगवान जो कि संतों के प्रेम देने वाले हैं, संतों की रक्षा करने वाले हैं, भक्तों का भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार करने वाले हैं, उनके साथ क्या करना है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देयः पूज्यश्च नित्यदा। सबसे पहले क्या करना है, श्रोतव्य अर्थात श्रवण करना, भगवान को खुश करने का तरीका बताया यहाँ पर कि सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान को अच्छा लगता है जब आप भगवान की किसी कथा का भगवान के विषय में। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो मेरी इस भगवत गीता का पठन करता है, जो इसको सुनता है, भगवान श्री कृष्ण 18.71 श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 71 में कहते हैं श्रद्धावानन सूयश्च श्रूयादपि जो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, जो पवित्र आत्माएं जहाँ जाती हैं भगवान के पास। भगवान बता रहे हैं क्योंकि पुण्य आत्माओं का निवास भगवान के पास है, तो ये ऐसा श्रीमद भगवद गीता का खाली श्रवण करने के लिए साफ साफ बताया, श्रद्धावान ने सुनिएगा श्रोयादपि, जो श्रद्धावान श्रद्धा के साथ, जो अनुसूय मना जो द्वेष नहीं करते भगवान के साथ, प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रणु, श्रणु का मतलब होता है श्रुणुयात, मतलब सुनते हैं, अपि यो न रहा, जो इस शास्त्र को अर्थात भगवद गीता को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं और द्वेष नहीं करते, वे भगवान कहते हैं पुण्य लोक में जाते, उनके समस्त पापों का खंडन हो जाता है केवल श्रवण करने से। तो कृपा है कृष्ण की कि हम सबको श्रीमद भगवद गीता श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे प्रथम मार्ग भगवान के विषय में सुनना है। इसीलिए संत ऋषि और जितने भी बड़े बड़े भक्त होते हैं, वे सदैव भगवान के विषय में श्रवण करना ही उनको अच्छा लगता है। पता है जब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और तपस्या करने के लिए, यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए थे, यज्ञ कर रहे थे, 1,000 साल तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया था, लेकिन जैसे ही सूर्य महाराज आए उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया। अब यज्ञ स्टार्ट हो गया था और पहले से ही ये सबको ये अनाउंस कर दिया गया था कि ये यज्ञ 1,000 साल चलेगा, और 2-3 दिन तक यज्ञ स्टार्ट किया और सूत गोस्वामी आए तो फिर उन्होंने क्या किया, यज्ञ बंद कर दिया। सूत गोस्वामी ने कहा यज्ञ क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने, तो बोला अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। बोला लेकिन आप सबने ये अनाउंस किया था ना कि यज्ञ करना है हम लोगों को, हम 1,000 साल तक यज्ञ करेंगे, तो फिर बंद क्यों कर दिया यज्ञ। तो बोला ये यज्ञ तो केवल बहाना था, हमें पता था कि आप जैसे महान व्यक्ति आएंगे इस यज्ञ का सुनकर, तो फिर हम क्या करेंगे, यज्ञ को वाइंड अप कर देंगे और फिर भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो भगवान और 88,000 ऋषि जो कि जानते थे, बहुत कुछ पता था उनको सारे शास्त्रों के विषय में, लेकिन फिर भी जैसे ही सूत गोस्वामी के दर्शन हुए और उन्होंने सिर्फ एक ही प्रार्थना की कि हम श्रवण करना चाहते हैं, हमें श्रवण कराइए, हम भगवान के इस लीलाओं का, रसमयी शब्दों का श्रवण करना चाहते। क्यों? क्योंकि यत् श्रवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, ये ऐसा रस है जो जैसे जैसे सुनते जाते हैं ना उसका रस और भी स्वादु स्वादु और भी टेस्टी होता जाता है। ये भगवत गीता भगवान के शब्द, अब जब हम ये जब भगवान के शब्द स्टार्ट होंगे ना, यहाँ पर अभी हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट नंबर 31, अभी तो अर्जुन विषाद योग है, ये अर्जुन के दुख की जो स्थिति है, यानी भगवद गीता पढ़ने से पहले, भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई उससे पहले जो अर्जुन की स्थिति थी ना वो कितनी गंभीर थी, वो स्थिति के विषय में पहले हम लोगों को ये पता चले ना कि भगवद गीता या भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए कौन सी स्थिति अनुकूल है, वह स्थिति बताने के लिए यह अर्जुन विषाद योग यहाँ पर हमें बताया गया है वेदव्यास जी के द्वारा। और ये सुनकर हमें ये पता चलेगा कि हम भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और हम ये सिचुएशन जो है ना दुखमयी सिचुएशन है, विषादमयी सिचुएशन है, और इस संसार को कहा जाता है दुखालयम अशाश्वतम। तो यह जो सिचुएशन अर्जुन की है वैसी ही कंडीशन हमारी है, इसीलिए ये कंडीशन वेदव्यास जी ने क्यों बताया यहाँ पर, ताकि हमको ये रियलाइज हो कि ऐसी कंडीशन में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम एवं प्राप्य भजस्वमाम, क्योंकि यह संसार केवल दुख देने की जगह है, यहाँ पर तुम्हें केवल दुख ही दुख मिलेंगे, तो फिर यहाँ पर आके क्या करना है, एमं प्राप्य भजस्वमाम। और भजन करने से पहले क्या करना होता है, श्रवण। प्रहलाद महाराज जब नवदा भक्ति के विषय में बताते हैं तो क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्शनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहला शब्द आता है श्रवण, तो ये श्रवण जो है वो प्रथम भक्ति है। हमारा सौभाग्य है कि हमें श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 31। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवी न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। फिर से, न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवि न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। फिर से, न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवि न कांक्षे विजयं राजा। वापिस से रॉन्ग हो गया ना। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवि न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अंतिम, न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवि न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। शब्दों का अर्थ देखिए। न मतलब न तो, च मन भी, श्रेय श्रेय मना कल्याण, अनुपश्यामि पश्यामि कहते हैं देखना, अनुपश्यामि मतलब पहले से दिख रहा है, हत्वा मना मार के, और स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे का मतलब होता है युद्ध में, न मना न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूं, यानी कि इस युद्ध में मुझे कुछ भी कल्याण जैसा नहीं दिख रहा है, न च श्रेय अनुपश्यामि यानी कि कुछ भी मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इससे मुझे कल्याण होगा, इससे मुझे प्रॉफिट होगा, इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी मुझे कल्याण वाला तो लग रहा नहीं है, कुछ भी ऐसा तो लग ही नहीं रहा है इससे मुझे कुछ अच्छा फील हो, कुछ अच्छा देखे कल्याण कर, कुछ भी नहीं लग रहा है। तो किससे क्यों नहीं लग रहा है इसको, क्योंकि हत्वा स्वजनम आहवे, हत्वा मन मारकर स्वजनम, अपने संबंधियों को मारकर किसी को कल्याण लगेगा, अपना जो सगे होंगे, अपने जो रिलेटिव्स होंगे, उनको मारकर अर्जुन को कल्याण कुछ नजर नहीं आ रहा है। और आगे बोला, अब ऐसा मत समझना कृष्ण कि मुझे राज्य को प्राप्त करने का बहुत शौक है, मैं बहुत इच्छुक हूँ कि मुझे ना राज मिले या मुझे स्वजनों से जीत कर मुझे खुशी होगी, ऐसा मत समझना। साफ साफ बोल दिया, न कांक्षे विजयम, न कांक्षे विजयम कृष्ण, कांक्षे का मतलब होता है आकांक्षा करना, इच्छा करना, विजयम मतलब विजय की, कृष्ण हे कृष्ण मुझे जीतने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं जीतना भी नहीं चाह रहा हूँ, न च राज्यम सुखानि च, और ना ही मुझे राज और सुख भोग की कोई इच्छा है। आप जान लो कृष्ण कि मुझे ना राज चाहिए ना जीत चाहिए, और ना ही मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई अच्छाई कोई कल्याण दिख रहा हो, मुझे कुछ भी नजर नहीं। तुम खाली मुझे इस युद्ध से बचने का कोई तरीका बताओ, क्योंकि इसमें कुछ भी अच्छाई नजर नहीं आ रही है। अनुवाद देखिए, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अर्जुन ने अपनी इच्छा बताई है, देखो इच्छा का क्या मतलब होता है बताओ? अब क्योंकि अर्जुन ने अपनी इच्छा बताई है, इसका मतलब है ये अपनी इंद्रिय तृप्ति। इच्छा का मतलब होता है किससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। अब प्रेम और काम में फर्क होता है, इच्छा और प्रेम में फर्क होता है। और क्या फर्क होता है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नामक काम। जो निज इंद्रिय है मतलब अपने जो शरीर है, अपने अपने जो इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, हाथ, हाथ, पैर, जिह्वा, लिंग तथा गुदा, ये 10 इंद्रियां हैं ना। निज इंद्रिय तृप्ति वांछा, जब आप इनको प्रसन्न करने की इच्छा करते हो, तार नाम काम, वो काम है, हवस है, वो प्रेम नहीं है। ये मत समझना कि किसी को प्रेम करने के लिए तुम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना चाह रहे हो, ये तुम्हारी इंद्रियों की ख्वाहिश है। इसलिए अगर आप वो कर रहे हो तो इसका मतलब है वो प्रेम नहीं, वो काम है। और कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम, और प्रेम का नाम किसने धरा है? धरे प्रेम नाम कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा, कि बस मैं किस तरह से कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा, उनको कृष्ण की इंद्रियों को कैसे प्रसन्न करूं। कृष्ण की इच्छा थी कि युद्ध हो। इच्छा क्यों थी? क्योंकि अधर्म का नाश करना अनिवार्य था। भगवान के आने का एक कारण अधर्म का नाश करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं यहाँ पर हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान की योजना थी कि दुष्टों का संहार होना चाहिए, और अर्जुन वो नहीं करना चाहता था। इसका मतलब है वो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहता था, बल्कि अपनी इच्छा बता रहा था। बोल रहा था ना ऐसे कि मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं रखता हूँ, यानी कि मैं नहीं रखता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि मनुष्य को ये जानने का इच्छा ही नहीं होती है कि मैं कैसे खुश होऊंगा, बस वो अपनी मर्जी से बता रहा है। देखो, यह जानने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण या विष्णु के साथ, विष्णु है यानी कि उनको खुश करने में है, उसका आपका स्वार्थ किस में है? भगवान को खुश करने में। और सारे बद्ध जीव क्या करते हैं? शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न हो जाएंगे। जो शारीरिक संबंध है ना, कि उनके वो प्रसन्न होंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, बस ये शारीरिक, या अपने शरीर को खुश करके, या मेरे शरीर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनको, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको एकदम डिसिप्लिन बनाकर, उनको बहुत अच्छे तरीके से यदि हम सेटिंग कर देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी बोलते अक्कल नहीं, इनको समझ में नहीं आती बात कि वो भगवान का अंश है और भगवान को प्रसन्न करने से ही प्रसन्न हो सकता है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। देहात्म बुद्धि, फिर से है ना, देखो मैंने बोला था बार बार आएगा, देहात्म बुद्धि का क्या मतलब है? शरीर को ही सब कुछ समझना, देह में आत्मा की बुद्धि, यानी शरीर से आगे अपनी आत्मा को ना देखना। और वापिस मैं आपको बता दूं कि हमारे समस्त दुखों का कारण यह देहात्म बुद्धि है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं, यानी संसार में भी सुख उसको कैसे मिलने वाला है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भूल जाते हैं। यदि मनुष्य, यदि कोई भी जीव अपनी स्थिति को भूल जाता है तो उसे दुख भोगना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। जरा सी छोटी सी मिसाल दें, अगर हम कहीं जाना हो हमें और रेल में चढ़ना हो ना, तो ट्रेन में जब हम चढ़ रहे हैं तो ऊपर लिखा हुआ है लेडीज डिब्बा, एक लेडीज डिब्बा होता है, एक है ना पुरुषों के लिए होता है। और अगर हम अपनी स्थिति को भूल जाएं और हम कोई पुरुष है तो फिर लेडीज डिब्बे में बैठ जाए,
क्या होगा आगे जाके, अपनी स्थिति को थोड़ी देर के लिए भूला और बैठ गया लेडीज डिब्बे में, और भी क्या होगा, ऐसी पिटाई होगी और टीसी पकड़ेंगे, डंडे लगेंगे, और कितनी बेइज्जती होगी, कितना दुख उसको उठाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भी यदि अपनी स्थिति कोई भूल जाता है तो उसे परेशान होना पड़ता है। और जरा सोच के देखिए भक्तों, हम देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर से अपनी असली शनाख्त, अपनी असली पहचान, अपनी रियलिटी यानी हम भगवान के अंश हैं उसको भूल बैठे हैं, तो सुख का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी आध्यात्मिकता को, अपने आत्म साक्षात्कार का दर्शन नहीं करते, तब तक हम सुख के बारे में सोच भी नहीं सकते। और श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। अर्जुन को ये भी याद नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे सुख की क्या इच्छा है, मेरी क्या प्रसन्नता है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। वो क्षत्रिय था, उसका एकमात्र धर्म क्या था कि जो अधर्म है उसका विनाश करना। क्षत्रिय का काम ही एक होता है, जो अधर्म है, जो दुष्ट है, उनको सजा देना। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो अपना नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, या जो बड़े संत भक्त हैं उन्होंने भी बताया ऐसा, कि जो दो टाइप के लोग होते हैं वो बहुत शक्तिशाली यानी सूर्य मंडल जो है बहुत ही जाज्वल्यमान यानी कि बहुत ही प्रकाशमान है, बहुत ही सुंदर लोक है सूर्य मंडल, और उसमें दो टाइप के लोग जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, वो क्षत्रिय जो भगवान की इच्छा से युद्ध करता है, और तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। एक सन्यासी जिसने आध्यात्मिक अनुशीलन किया है एक उसमें लगा हुआ है, और दूसरा क्षत्रिय जो कि भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध करता है। ये दोनों किधर जाते हैं? जो बहुत ही शक्तिशाली जाज्वल्यमान सूर्य मंडल है उधर जाते हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ दो, वो बोल रहा था कि मेरे को मारना ही नहीं है, ना मुझे सुख चाहिए, ना राज्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और यहाँ पर मारने से मुझे कुछ भी कल्याण जैसा नहीं लग रहा है, मैं लड़ाई करना ही नहीं चाहता हूँ। वो किसी तरह से इस लड़ाई से बचना चाह रहा था, इसलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ दो, वो दुश्मनों को भी मारने के लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने दुश्मन कितने थे, दुर्योधन, दुशासन और दूसरे भी कितने सारे इसके भाई थे, जो कि कितने दुश्मनी करते थे हमेशा पांडवों के साथ, हमेशा उनको कष्ट देते थे। लेकिन अर्जुन बोल रहा था नहीं छोड़ दो, मेरे को मारना ही नहीं है, बस मैं मार ही नहीं रहा हूँ, इससे बेहतर है मैं क्या करूँ, यहाँ से चला जाऊं और भीख मांगू। तो आगे बोल रहा है वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भी भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। अब विष्णु भगवान जी बता रहे हैं कि जब किसी को भूख नहीं लगती तब हमें खाना बनाने का भी मूड नहीं होता उसको, हालांकि दूसरे लोग को भूख लग रही होती है, फिर भी अगर किसी स्त्री को भूख नहीं, बोला आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरह श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन को युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, वो समझ रहा था कि युद्ध करना जरूरी ही नहीं है, बस युद्ध कर ही नहीं रहा हूँ, और उसने क्या निश्चय कर लिया था कि एकांत में चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा, और निराशा पूर्वक कहना एक जीवन गुजारने की उसने ठान ली थी। अर्जुन की परिस्थिति बहुत गंभीर थी, उसका मन दो नावों में सफर कर रहा था, एक साइड पर उसका क्षत्रिय धर्म था और दूसरे साइड पर स्वजनों का मोह, ये दोनों उसको एक साथ एक एक नुक्ते पर बैठ के विचार करने का अवसर प्रदान नहीं कर रहे थे। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं, या मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूं, या मैं अपने स्वजनों के साथ जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे कर्तव्य अपने स्वजनों के साथ निभाने हैं, उनका पालन करूं, मैं इन दोनों में से क्या करूं। और यहाँ पर अब वो चाह रहा है, अपना डिसीजन थोड़ा थोड़ा बताते हुए कह रहा है कि मुझे कुछ कल्याणकारी तो दिख ही नहीं रहा, और जिस चीज में प्रॉफिट नहीं है वो कार्य करने का क्या फायदा, और मुझे क्योंकि ना विजय चाहिए और ना ही राज्य चाहिए। लिखा हुआ ना कांक्षी विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानी च, ना मुझे विजय में चाहिए और ना ही राज्य या सुख की कोई इच्छा है। मैं इन सबको नहीं चाह रहा हूँ, इससे बेहतर मैं युद्ध ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी मुख्य बात बता रहे हैं, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य कर ही नहीं सकता। उसका स्वभाव उसको लड़ने पर मजबूर करेगा, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है उसका स्वभाव होता है कि वो राज करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 13, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, के जो मैंने ये चार तरह के वर्ण और आश्रम बनाए हैं ना, वो मैंने बनाए हैं, और किस बेस पर बनाए हैं, गुण और कर्मों के अनुसार। जैसे आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं और आपके अंदर जैसे जैसे गुण हैं, इन दोनों को मिलाकर आपको वर्ण या आश्रम मिलता है। जो भी आश्रम है, जो भी वर्ण है ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जन्म से नहीं होते हैं। आपने जैसे कर्म किए ना, उसके अनुसार आपको कभी शूद्र का जन्म मिलता है, कभी है ना ब्राह्मण का, कभी क्षत्रिय का, कभी वैश्य का, शुद्ध, इस तरह से जो भी आपको जन्म क्यों मिलता है, ऐसा आपको ब्राह्मण क्यों बनाया गया, आपको क्षत्रिय क्यों बनाया गया, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। पहली बारी में आपके कर्म ऐसे थे, और दूसरा ये कि आपके पास अभी गुण भी ऐसे हैं, तो जो आपके अंदर गुण होगा उसी के हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको प्रेरणा देगा उसके बाद, लेकिन आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के अंदर युद्ध करने का एक पहले से गुण होता है, उसको करना ही पड़ेगा, वो इससे विमुख नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है, इसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके। अब उसके पास एक ही तरीका है, क्योंकि उन्होंने सारी योजनाएं करके देखी ना। पहले देखो, हस्तिनापुर को दो हिस्सों में बांट दिया, एक इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया और हस्तिनापुर दुर्योधन ने ले लिया। उसके बाद भी दुर्योधन को चैन नहीं आया और उनका हिस्सा भी उनसे ले लिया छल करके। और उसके बाद भी क्या किया उन्होंने, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देने के बाद भी वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्षत्रिय को राज्य की आवश्यकता होती है, क्षत्रिय को राज्य ही करना होता है, और वो अब नहीं कर रहा था। मतलब अगर युद्ध नहीं करता तो उसे कैसे प्राप्त होता, और तो कोई तरीका ही नहीं था ना। शांति दूत भी भेज कर देख लिया, भगवान को भी उन्होंने निरादर किया, तो फिर अब उसके पास एक ही रास्ता रह गया था कि वो युद्ध करे, लेकिन वो वही युद्ध नहीं करना चाह रहा था। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के लिए योग्य समझता था। वो क्या सोच रहा था, इससे बेहतर है एकांत में मिल जाऊं, निराशा पूर्ण जीवन गुजारूं, अपने कर्तव्य को भी छोड़ दूं। वास्तव में यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध उसको करने के लिए उकसाया जा रहा है, वास्तव में इसका ये मतलब है कि युद्ध करना अनिवार्य है। जब अधर्म जोर पकड़ता है ना, तो फिर उसका सर्वनाश करना अनिवार्य है। यदि नहीं करते ऐसा कृष्ण, तो आज जो समाज अपनी कुलवधू का अपमान करता कर रहा था, जो द्रौपदी का अपमान करते हुए अपने नेत्रों से देख रहा था, वो समाज भला किसी साधारण स्त्री के मान और लज्जा कि क्या सम्मान क्या करता, उसका तो अपमान उनके लिए तो कोई बड़ी बात होती ही नहीं। तो इसलिए यह अपमान, यह अधर्म को रोकने के लिए यह युद्ध बहुत अनिवार्य था। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है, नचेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवि नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। उसे धर्म और अधर्म का ख्याल नहीं आ रहा है इस टाइम पर, क्या सोच रहा है? इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करके मुझे तो कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही, अपनी अच्छाई नजर आ रही है, और मैं उससे किसी प्रकार विजय की राज्य या सुख की इच्छा नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं हो रही है। इसका मतलब है करना ही नहीं, कर्तव्य को आपकी इच्छा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, कर्तव्य तो करणीय होता है। भगवान कहते हैं अपने कर्मों को तुम्हें पूरा करना है, फल की इच्छा मत देखो कि उससे मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको कर्म करना है, कर्म जो आपका कर्म है, बाकी ये मेरे ऊपर छोड़ दो कि उसका फल अच्छा हो रहा है, कल्याण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, सुख मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, वो सब मुझे डिसाइड करने दो, आप खाली अपना कर्म करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।